रेडियो मानवश्टा 107.8 FM, मैं हूं आरजे सागर। और दोस्तों, ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। द सोल पर्पस ऑफ दिस शो इज कि जब ये शो खत्म हो, आप एक नई दुनिया से काफ़ी परिचित हो चुके हों। और हर बार यहां पर एक स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज यहां पर हमारी खुशकिस्मती है, एक नहीं दो दो लोग हैं और दोनों बहुत खास हैं। WCA पोस्ट स्टूडियो यानी कि विजडम सिने आर्ट्स, काफ़ी नामी ग्रामी चर्चित एक स्टूडियो है अमंग फिल्म मेकर्स एंड जो उस इंडस्ट्री में है। बाकी आज के शो की जो हमारी थीम है वो होने वाली है द क्राफ्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन। बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं और इस एक चीज़ के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है WCA पोस्ट स्टूडियो के फाउंडर्स सपना मैम, सपना जैन एंड देवेश सर, मिस्टर देवेश प्रताप। हाई सर, हाई मैम, वेलकम टू रेडियो मानवश्टा।
हेलो,
सो कैसे हैं आप लोग?
बिल्कुल बढ़िया, मस्त।
तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, प्लीज हमें थोड़ा सा बताइए अपने स्टूडियो के बारे में। व्हाट इज WCA पोस्ट स्टूडियो, क्या करता है आपका स्टूडियो ये पूरा?
विजडम सिने आर्ट्स इज अ मदर ब्रांड और 2012 में हमने इसे फाउंड किया था। और उस वक्त के बाद WCA पोस्ट स्टूडियो, मतलब पहले ये कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस था जिसमें कॉर्पोरेट फिल्म, आर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री ये सब बनती थी। फिर अपने ही पोस्ट प्रोडक्शन के लिए हमने WCA पोस्ट स्टूडियो फॉर्म किया जिसमें हम सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते थे, जिसमें एडिटिंग, VFX, कलर ग्रेडिंग ये आता था। 2016 में ये हमने विंग फॉर्म की थी और इसके बाद से ये आई थिंक एज पर द क्लाइंट रिव्यू दिस इज़ ओनली वन फुल फ्लेज्ड पोस्ट स्टूडियो इन नोएडा। आज हम इसे रन कर रहे हैं सक्सेसफुली और यहाँ से कई OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए फीचर फिल्म्स गई हैं, वेब सीरीज़ गई हैं, डॉक्यू सीरीज़ गई हैं और कंटिन्यू इधर इट इज़ एप्पल के लिए भी गई हुई है, अमेज़ॉन के लिए गई हुई है और डॉक्यूबे, कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये पोस्ट प्रोडक्शन हमारे यहाँ से होके फिल्म गई हुई है।
तो जो डायरेक्टर्स बोलते हैं आप लोग वो फाइनल स्क्रिप्ट लिखते हो?
जो वो शूट करके लाते हैं, जो वो कलेक्ट करके लाते हैं वो हम उसको।
तो आपके हाथ में है कि किसी को हीरो बना भी सकते हो
और काट भी सकते हो। राइट।
सो वंडरफुल। देवेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा बताइए व्हाट इंस्पायर्ड यू, कैसे शुरू हुआ इसकी जर्नी, थोड़ी मैं जानना चाहूंगा
पोस्ट प्रोडक्शन की।
हाँ जी।
तो क्या होता था कि जब हम लोग शूट करते थे, प्रोडक्शन हाउस जब हमारा रन होता था यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी। जैसे DIA कलर ग्रेडिंग, वो मुंबई जाके कराना होता था। VFX है वो भी मुंबई होता था। एडिटर अच्छे मिल जाते थे यहाँ पे। साउंड का काम तो बाहर ही होता था। तो ये क्या, ये हम लोग का पेन था। फिर देखते थे, कई बार लोग बाहर से पूछते थे कि आपका प्रोडक्शन हाउस है, ऐसा काम हो सकता है क्या? हम लोग कहते नहीं नहीं एडिट वगैरह हम उठाते नहीं हैं, बाहर से खुद करते हैं। तो बाहर से रिक्वायरमेंट काफ़ी आने लगी थी। फिर हम सपना ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, एक वर्टिकल अलग से क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन में डील करेंगे। तो एक हमने शुरू तो किया। फिर क्या हुआ कि लगा कि नहीं, प्रोडक्शन हाउस में ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो सोचते हैं कि हम कोर पोस्ट स्टूडियो में जाएं, प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे तो थोड़ा क्लाइंट क्लैश होगा, ये भी वहीं शूट करते हैं हम भी पहुंच जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें। बट हमने उसको बहुत ऑनेस्ट वे में उसको शुरू किया और पोस्ट प्रोडक्शन का एकदम पूरा अलग वर्टिकल खड़ा किया जिसमें कलर ग्रेडिंग, ये हमारी USP हुई कलर ग्रेडिंग की। हमने मतलब एडिट तो कहीं भी हो जाता था, दिल्ली में भी स्टूडियोज़ थे, बट DI कहीं नहीं था जिसको कलर ग्रेडिंग बोलते हैं। तो हमने जो DI का सेटअप लगाया कलर ग्रेडिंग का, वो हमारे लिए USP बनी। फिर अब उसके लिए लोग दिल्ली मुंबई जाते थे, वो फिर हमारे पास आने लगे, नोएडा आने लगे। तो उसका सक्सेस ये हुआ कि फिर वो फुल फ्लेज बोलते थे कि कोई पूरा डेटा ले आए कि यहाँ एडिट भी करना है, कलर भी करना है और VFX भी हो जाए, सारा काम हो जाए। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने लगा लोगों को और वो हमारे लिए सक्सेसफुल रहा चीज़ें और लोगों को काम भी पसंद आने लगा।
इंटरेस्टिंग। अगर इसके थोड़ा सा और पीछे चले तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको इस इंडस्ट्री में उतरना है? लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी हियर?
ओके, तो ये थोड़ा सा वही होता है कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में हर बंदा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो एक अंदर ड्रीम है, या हम पूरे इंडियन एक आर्टिस्ट हैं। तो मैं बचपन में तो रहता था कि ऐसा कुछ मेरे को जाना है, मतलब फिल्म में या कुछ ऐसा कुछ, बट वहाँ पे कोई वे नहीं था। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ क्या होता है, जनरली या तो IAS करना है, PCS करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, बट आपको कुछ न्यू नहीं ट्राई करना, रिस्क नहीं लेना है, वो होता है एक सेट ऑफ पैटर्न है। तो बट मैंने सोचा नहीं, मेरे को रिस्क लेना और मेरे को ट्राई करना है। तो मैं इलाहाबाद में था तो वीर ज़ारा आई थी उस समय, और मेरे मैं जहाँ रहता था वहाँ से बहुत पास में थिएटर था, तो मैं कंटिन्यू 7 डेज उस मूवी को देखा, पर डे मैं एक शो देख के आता था तो जब मैं उस मूवी को देखा तो मैं वहाँ से उस समय मेरे को एक ट्रिगर मिला, अब तो मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इसके बाद ये फिल्म मेकिंग का ही कोर्स करना है। फिर मैंने इंस्टीट्यूट ढूंढा नोएडा में और फिर वही घर पे रिक्वेस्ट कहने में करना ही करना, यही करना है। तो वहाँ से फिर मैं इस तरफ आया, कोर्स किया, कोर्स करने के बाद फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में एक साल मैंने आज ईडी काम किया सीरियल में, फिर उसके बाद रिटर्न आया दिल्ली, तो जी के लिए मैंने एक शो एज ए पोस्ट प्रोड्यूसर काम किया था, फिर उसको ख़त्म होने के बाद फिर हमने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया।
ओके, और ये 2012 की बात हो रही है?
हाँ जी,
2012 में ही WCA स्टार्ट हुआ।
हाँ, विजडम सिनेआर्ट्स।
हाँ, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन आपने स्टार्ट किया?
हाँ, विजडम सिनेआर्ट्स 2012 में शुरू हुआ, 2016 में फिर हमने पोस्ट ये WCA पोस्ट स्टूडियो को खड़ा किया।
ओके, सबने आप बताइए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली?
इंस्पिरेशन
इन्होंने तो वीर ज़ारा देख ली एक हफ्ते तक।
मेरा जो एक इंटेंशन था, मुझे हमेशा से एक अपनी एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत शौक था। मुझे करियर में कभी ये नहीं था कि मैं इतना पैसा कमा लूँ, मैं इस पोजीशन पे आ जाऊँ। मुझे हमेशा से अपनी आइडेंटिटी का एक बहुत क्रेज़ था, मुझे लगता था एक मेरी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और पता नहीं बाई बर्थ कह लेंगे, मैं 10th क्लास से एड लिखती थी। मैं ऐड फॉर्म में, जब सब लोग सीरियल देखते थे टीवी पे और उठ जाते थे ऐड के टाइम कुछ काम करने, और मैं ऐड बैठ के देखती थी। मैं सीरियल भले ही नहीं देखूं, मैं ऐड बैठ के देखती थी। मुझे ऐड का बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे एक प्रोडक्ट कैसे निकल के आया, इसकी स्टोरी क्या है। वो फाइल आज भी मेरे पास है जो मैंने बचपन में लिखी थी। तो मैंने कई ऐड जो मन में आते थे, कभी मैगी पे, कभी किसी भी ब्रांड्स पे, मैं ऐड्स लिखती रहती थी। तो शायद ये इंटरेस्ट पहले से था कि ऐड इंडस्ट्री में जाना है। मुझे फिल्म से ज़्यादा ऐड का इंटरेस्ट था पहले, अब तो खैर वो जब पूरे उसमें आए तब लगा कि नहीं, ये तो एक सारी चीज़ यही है, आप किस में जाते हैं, सेगमेंट ही डिवाइडर है।
तो आपकी स्टोरी से इतना तो समझ आ गया, यूट्यूब प्रीमियम का एक कस्टमर कम हो गया है क्योंकि उस पे ऐड नहीं आते हैं और आप सिर्फ ऐड के लिए देखते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। वेल, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे देश की महिलाओं को खास तौर पर एक पहचान मिलनी चाहिए, सबका एक स्टैंड होना चाहिए, और ये पैशन, ये आग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ कई सदियों से ऐसा हुआ है कि उनको समझा ही नहीं गया है कि आप क्या करोगे अपने पहचान का और नाम का। इट्स सो वंडरफुल टू हियर फ्रॉम अ वुमेन जिन्होंने खुद अपने लेवल पर काफ़ी अच्छा काम किया।
मैं इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी, जैसा आपने विमेन से रिलेटेड बोला, तो मैं हमेशा बस यही इंस्पायर करना चाहती हूँ हर एक विमेन को। जब लोग कहते हैं ना, ज़्यादातर जैसे पैट्रियार्कल फैमिली में होता है या किसी भी फैमिली में, जल्दी लोग कहते हैं ये करके कितना कमा लोगे घर बैठो, मैं उस बात पे हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ कमाने के लिए काम नहीं करना है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है उसके लिए काम करना है। तो हर किसी को काम करना चाहिए, अपने पैशन को आप फॉलो करिए।
बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपका अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है आपका, कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो ऐसा कुछ करके जाइए कि चार लोग एटलीस्ट आपको जाने, गुमनाम जिंदगी ना हो। अब थोड़ी सी आगे हम बात करते हैं और अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, विच इज पोस्ट प्रोडक्शन। अब मैं आप दोनों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप में से जो भी जवाब पहले देना चाहे प्लीज दे दीजिएगा। आप दोनों के हिसाब से पोस्ट प्रोडक्शन कितना अहम रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी एक प्रोजेक्ट में, बीट अ फिल्म और एड और एनीथिंग?
तो पोस्ट प्रोडक्शन मतलब ये तीन जो फेज होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। बट हुआ क्या है कि बड़ी फिल्म जो होते हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। लेकिन जो छोटा प्रोजेक्ट होता है, छोटा कोई कुछ कर रहा है जिसका बजट कम होता है या इंडिविजुअल, वो पोस्ट प्रोडक्शन को बहुत इग्नोर मानते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये कोई भी कर लेगा या इसमें क्या होता है चीज़ें ना। तो लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत अच्छा लिख लिया, आपने बहुत अच्छा शूट कर लिया, अगर वहाँ पे एडिट सही नहीं हुआ, कट सही नहीं लगा, कलर अच्छा नहीं हुआ, अगर म्यूज़िक भी, अगर बीट इधर उधर हो गई, सही साउंड इफेक्ट नहीं लगा, आपकी पूरी फिल्म बेकार हो जाएगी। वो चाहे वो 30 सेकेंडर है, एक रील भी है, वो ढंग के अगर सही जगह पे कट पे अगर साउंड इफेक्ट नहीं लगाया और आप जो बना रहे हैं उसमें सही चीज़ें नहीं कन्वे हो रही हैं, वो एडिट पे ही डिसाइड होता है। कई बार क्या होता है, मैसअप हो गया शूट पे, बट एडिट अगर एडिटर बहुत अच्छा है, आपका जो पोस्ट प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, तो आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा टर्न कर सकता है उसको। तो पोस्ट प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी प्रोजेक्ट करें, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में क्या हुआ कि एक पॉइंट ये है कि जब नेटफ्लिक्स आया तो उसने पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका होता है उन लोगों का, वो थोड़ा सा बहुत ही डेडिकेटेड होता है, हर डिपार्टमेंट को उतना ही वो पूरा वैल्यू देते हैं। तो जब वो इंडिया में अपना शो शुरू किया या चीज़ें, तो उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ों का एक सेट फॉर्मेट कर दिया कि जब आप कलर करेंगे तो मॉनिटर की ये ही ये चीज़ें इसकी वैल्यू होनी चाहिए, या ये मॉडल होना चाहिए, जो अगर इससे नीचे होगा तो हम शो नहीं लेंगे। आप किस सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट है, उन्होंने पूरा एक अपना टेक स्पेक बनाया और लोगों को बताया कि आप इस चीज़ को फॉलो करिए जिससे हम अच्छा कंटेंट बना आप डिलीवर करेंगे और हम एग्जीबिट कर पाएंगे। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके बाद से जो और भी OTTs थे इंडिया के या प्रोडक्शन हाउस थे, इन सब चीज़ों को फिर सीरियसली लेना शुरू किए, या जो इंडिविजुअल शोज़ बना रहे थे यूट्यूब, उन्होंने भी उस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया, और उससे पोस्ट प्रोडक्शन की ना वैल्यू और इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ी है। वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन सब चीज़ों में। और दूसरा, टेक्नोलॉजी भी अप हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो पोस्ट प्रोडक्शन का भी रिक्वायरमेंट अच्छा हुआ है। बट हाँ, लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, जब शूट करते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है कैमरा बहुत अच्छा ले लेते हैं, DOP बहुत अच्छा, एडिट के टाइम पे वो इस चीज़ को लैक कर जाते हैं कि हमें एडिट पे बजट, कई बार वो बजट को वो अक्सर ये बोलते हैं मेरा सारा पैसा ना शूट पे खर्च हो गया, अब एडिट के लिए पैसा नहीं बचा या पोस्ट के लिए नहीं बचा, बट वो रॉन्ग है। आप जितना इम्पोर्टेंस वहाँ दे रहे हैं, आप उसमें से उस वैल्यू को बचा के रखना है आपको पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, तभी आपकी फिल्म अच्छी निकल के आएगी।
सो वंडरफुल, क्योंकि विजन पूरा हो नहीं पाएगा।
राइट।
सर, आपने एक टर्म यूज करी है अभी अपने वाक्य में, गुड एडिटर, एक अच्छा एडिटर। मैं इसकी परिभाषा जानना चाहूंगा, क्योंकि लिटरली बहुत सारे एडिटर्स हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर देखते हैं तो हर इंसान यही चल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ गुड वीडियो एडिटर, गुड वीडियो एडिटर, बट देयर आर लॉट ऑफ एडिटर्स। तो किस टर्म में हम एक एडिटर को गुड एडिटर मानते हैं, इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ नोइंग द टूल्स, या फिर डायरेक्टर के साथ जिसका विजन अलाइन होता है वो एक बढ़िया एडिटर हो जाता है, तो कैसे काम करता है फंडामेंटल?
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एडिटर्स आज के समय में खासकर क्या होता है, जो टूल को जान लेते हैं वो कहते हैं मैं एडिटर हूँ, बट वो आपने एक टूल सीख लिया, वो कोई भी सीख सकता है। एडिटिंग एक्चुअली डायरेक्टर के बाद ना सबसे बड़ा, जो अगर आप किसी को मानते हैं तो एडिटर होता है। तो एडिटर मतलब कि हो गया कि आपकी सॉफ्ट, आपकी स्किल, क्रिएटिविटी, मतलब जो आपने अडॉप्ट किया कंटेंट को, या जो भी आपने सीखा है, आपका जो मैकेनिकल मतलब टूल और आपका जो क्रिएटिविटी, दोनों जब मैच कर जाता है तो वो अच्छा एडिटर, गुड एडिटर उसी को बोलते हैं। कि वो अगर वो फिल्म में कट लगा रहा है, कहीं भी कट कर रहा है, फिल्म को ड्रॉप कर रहा है, तो वो डायरेक्टर को बोल सकता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अच्छा एडिटर वही है कि आप टूल तो जानिए, वो तो मस्ट है, बट आपका दिमाग जो है, मतलब जो क्रिएटिविटी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो मतलब हम लोग ये बोलते हैं इसमें तीन चीज़ काम करती है, दिल, दिमाग और हाथ। अगर जब तीनों चलता है तो वो अच्छा एडिटर कहलाता है, गुड एडिटर वही है।
ठीक है, अगर किसी एक इंसान को, लेट्स से कोई इंसान इस टाइम हमारी आवाज सुन रहा है और एडिटर है और वो अपनी क्रिएटिव साइड को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाह रहा है, सो व्हाट डू यू रेकमेंड टू डू?
तो उनको ना मतलब अगर पहले तो वो देख लें वो डील किस में कर रहे हैं। दो तरीके की चीज़ें होते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। अगर मान लीजिए फिक्शन इंडस्ट्री वाले उन शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहे हैं, या फिल्म है, या उनके पास एड आ रहे हैं, फिक्शन टाइप चीज़ें आ रही, तो उनको उससे रिलेटेड ना जो भी कंटेंट, टॉप के कंटेंट है, उनको रिव्यू करना चाहिए विदाउट ऑडियो, मतलब म्यूट करना है आपको, कट डिसाइड करना है कि कहाँ पे क्या कैसा कट किया है डायरेक्टर ने, ये जो टॉप की फिल्में हैं इनमें कैसा एडिट हुआ है, कैसे स्टोरी को प्ले किया गया है। वो जो ऑब्जर्वेशन है वो आप अपने कंटेंट में जब आपके पास आएगा तो आप उससे अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर नॉन फिक्शन आप कर रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गई, या वेडिंग कर रहे हैं, न्यूज़ शो कर रहे हैं, या न्यूज़ पैकेजिंग कर रहे हैं, तो उनको अपने जो लेवल के कंटेंट है, उनको टॉप कंटेंट को आपको ऑब्जर्व करना है जितनी बार रिव्यू। एक्चुअली क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमारा माइंड उस कंटेंट में घुस जाता है। जब ऑडियो म्यूट करते हैं तो आपको कट दिखाई देते हैं कि कहाँ से क्या कट किया गया है। तो आपको अगर किसी कंटेंट को दो बार, एक ऑडियो के साथ एक विदाउट ऑडियो को देखा जाए, तो रिसर्च का ये अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरा क्या है कि आपको इस इंडस्ट्री का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट्स क्या होते हैं, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, स्टोरी टेलिंग क्या है, ये सब जब समझ लेते हैं आप तो जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आपका दिमाग और वही हाथ दोनों बहुत अच्छे से काम करता है और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं।
ओके अच्छा एक सवाल यहाँ पर आप दोनों के लिए है मेरा, क्योंकि आप लोग टेक्निकल हो गए हैं उस चीज़ में, तो जब आप कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हो, बीट अ वेब सीरीज, बीट अ मूवी या फिर एक रील ही क्यों ना हो, तो क्या आप उसको एज इट इज एंजॉय कर पाते हो एक ऑडियंस की तरह, या फिर आप उसमें देखते हो कि कैसे एडिट किया है, फ्रेमिंग कैसे है, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है? दिस इज ऑनेस्ट क्वेश्चन।
ये तो है कि बीइंग इन इंडस्ट्री और इतने सालों से चीजें देखते देखते ना, मतलब कंटेंट कई बार ऐसा होता है कि डाइव तो कर जाते हैं लेकिन वो दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है कि यार क्या कलर हो रखा है, क्या फ्रेमिंग कर रखी है डायरेक्टर ने, है ना, डीपी ने क्या काम रखा, आर्ट का काम कितना अच्छा हो रखा, नहीं हो रखा है तो भी लगता है कि यार ये चीज लैक कर रही है, वो होता है, डिस्कशन ऑफ द पार्ट हो जाता है कि मतलब इतना आप देखते हैं चीजें करते हैं तो आ जाता है, वो दिमाग में चलता रहता है क्योंकि आप दिन रात उन चीज़ों को देख रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप जब आपके सामने एक कंटेंट है तो आपके वो फिर डिस्कशन का सब्जेक्ट बन जाता है।
राइट, ये इस मामले में तो मुझे हंसी इसकी आ रही थी कि हमारे एक दो फ्रेंड्स कहते भी हैं कि उनके साथ अगर हम मूवी चले जाते हैं तो हम लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं, चुपचाप ही करते हैं, बट हाँ तो कहते हैं यार तुम लोग शांत बैठो, तुम लोग क्यों साथ में डिस्कस कर रहे हो, कंटेंट एंजॉय करो, या हम लोग आते हैं तो वो लोग कंटेंट की बात कर रहे होते हैं और हम अपने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं, यार उसमें ये चीज़ ठीक थी, ये सही करना था, ये था, तो एक पार्ट होता है वो पॉइंट, सही है कि आप जब उस इंडस्ट्री में हैं तो कई चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जो एक लेमैन की तरह नहीं होती हैं, आप ऑटोमेटिक ही उसमें इंडल्ज हो जाते हैं।
तो एक ड्रॉबैक भी होता है किसी भी फील्ड में आके एक्सपर्ट बनने का कि आप एक नॉर्मल ऑडियंस रह नहीं जाते हो,
राइट,
आप चाह के भी एंजॉय नहीं कर सकते हो कि मैं आज पॉपकॉर्न लेके बैठता हूँ, मैं बस कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, चिल करूंगा मैं, बट देन आफ्टर 5 मिनट्स यार फ्रेम ठीक नहीं,
हां वो स्ट्राइक कर जाता है माइंड, हां
बट मुझे लगता है उसको भी हम एंजॉय करते हैं,
करना पड़ता है, मजबूरी है। ओके सबरे मैम, मेरा अब आपसे क्वेश्चन है क्योंकि आपने एड्स की बात करी एंड यू आर मोर इंटरेस्टेड इनटू एड्स, आपके हिसाब से एक बढ़िया एड बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होते हैं और एक अच्छे एड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये अच्छा एड है?
देखिए पहले के जब मैं स्टार्टिंग बताऊं तो शुरुआत में तो लगता था कि एक अच्छा ऐड ये होता है ऐसे करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि ऐड एकदम मैकेनिकल होता है और फिक्शन में या मूवीज़ में तो फिर भी आपकी चलती है, ऐड में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड की चलती है, तो अच्छे ऐड का डिस्क्रिप्शन मुझे जो लगता है वो सब कुछ ब्रांड पर डिपेंड करता है, आप एक तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी वहीं तक रह जाती है जब आप कोई चीज़ पिच करते हैं या अपने आइडियाज़ देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ब्रांड का जो पर्पज़ होता है वो प्रोडक्ट होता है, आप कैसे भी जाएंगे वो लास्टली प्रोडक्ट पे ही फोकस रहेगा, तो एक अच्छा ऐड अगर मैं ऐड पे जाऊँ तो वो ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐड पे खर्च ही इसीलिए होता है कि आप ब्रांडिंग करें, तो एक अच्छे ऐड की कैटेगरी में वही प्रोडक्ट अच्छा आता है जो अच्छे से अपनी ब्रांड वैल्यू को कन्वे कर सके, क्योंकि विदाउट ब्रांड वैल्यू किसी भी ऐड का कोई मतलब नहीं है, या तो फिर आप एकदम ही अलग टाइप में ऐड बनाएं, जैसे आप पहले में देखें ओनिडा का ऐड आता था, आज भी याद है कि टीवी पे वो सींग लगा के वो आदमी आ जाता था, डोमिनोज जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसका आता था एक ऐड, एकदम ड्रैकुला काइंड कैरेक्टर्स आते थे, हंगरी का डोमिनोज का, तो वो सब क्या था, माइंड पे रजिस्टर हो गए, तब वो पता नहीं था वो है क्या, ये क्या नया चला आया है, लेकिन वो ऐड आज तक याद है, तो या तो फिर आप ऐड ऐसे बनाएं जो ऐसे हों कि आपको सिर्फ ऐड के दम पे प्रोडक्ट याद रह जाए, आपको प्रोडक्ट भी नहीं पता और आपको ऐड याद है कि भाई ये कंपनी का ये ऐड है, अच्छा ऐड एक्चुअल में वो होता है, या तो फिर प्रोडक्ट फोकस है तो एकदम ही प्रोडक्ट फोकस है, आज के टाइम में कुछ ऐड्स लोग कंटेंट फोकस पे चलते हैं, जैसे बहुत सारे ऐड्स हैं जो कंटेंट बेचते हैं कि मतलब लास्ट में इनिशिएटिव बाई आ जाएगा कि इनिशिएटिव बाई दिस ब्रांड, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी के
हिसाब से। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ऐड के प्रोडक्शन की अगर आप बात करें ना, तो मान लीजिए वो कोई भी ऐड है, जैसे एक कोक ऐड है या मतलब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ऐड है, तो उनका जो कलर है, उनका जो एक मतलब बियॉन्ड कहते हैं वो लार्जर देन लाइफ है, तो वो एग्जीक्यूशन है कि आपके दिमाग में वो अगर पीछे कोई एक वॉल है तो वो रेड होनी चाहिए, मतलब वो कलर पैलेट आपके सेट पे दिखना चाहिए, अगर वो गाड़ी है तो उसमें भी कहीं दिखना चाहिए, आपका माइंड स्ट्राइक करे कि ये रेड है, ये इसी चीज़ का। तो ब्रांड से रिलेटेड आपके जो सेट है, प्रॉप्स है, उसमें वो चीज़ कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो एड प्रोडक्शन में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि एड को रिफ्लेक्ट करे इनडायरेक्टली। मतलब हो सकता है सोफे का जो तकिया उस कलर का आपके ब्रांड का किसी कलर से मैच होना चाहिए ताकि वो बहुत स्लाइटली हिट करे माइंड, हाँ, सटल वे में कि ये अच्छा, हाँ ये इसी ब्रांड का है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा चाहिए, कास्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जो अपीलिंग लगे, जो आपके ब्रांड से आपको कम्युनिकेट करे। और तीसरा है कि वही है कि मतलब आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना हाई लेवल पे, मतलब जो उसका डायरेक्टर है, डीपी है, जिसने एड की इंडस्ट्री में ज़्यादा काम किया, क्योंकि उसको पता होता है कि 30 सेकंड में कैसे निकालना है हमको। जो टाइमिंग है उसका बहुत बड़ा गेम है 20 सेकंड। अभी तो शॉर्ट फॉर्म में जो ये आपका हॉट स्टार वगैरह पे ऐड चलते हैं वो तो 10 सेकंडर में, अब उनको पूरी बात कहनी है तो 10 सेकंडर में कैसे क्रिएटिविटी निकालनी है, तो वो वही हो जाता है कि अब उसमें रोल प्ले करता है कलर, ब्रांड का कलर, कि कलर अब आपका जो पूरा पैलेट है वो फॉलो होना चाहिए ताकि ऑडियंस जो देख रहा है कम से कम उसके दिमाग में कुछ ना रजिस्टर हो तो कलर हो जाए कि अच्छा ये इसका मनोरचना का ऐड था, सपोज आपका कोई ब्रांड है। तो एक प्रोडक्शन डिज़ाइन और आपका प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन, कैरेक्टर और फिर आपका डायरेक्टर डीपी, ये बहुत क्रिएटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा ऐड के लिए।
तो ज़्यादा टाइट क्या होता है आपके पास इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी की, बहुत लिमिटेड स्कोप है बॉस, एड मूवी ओटीटी क्या?
मतलब किस टर्म से, मतलब एग्जीक्यूशन से या
नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं।
अच्छा, एड का ज़्यादा होता है टाइट। एड में क्या होता है आज के समय में ऐसा है कि अब जैसे आईपीएल चल रहा है, किसी को लगा कि यार मेरे ना इतना अमाउंट बचा हुआ है, इसे और फ्लोट करना है, न्यू एड डालना है, तो ये होगा कि दो दिन में हमें ये करके देना है। अब दो दिन का मतलब एक दिन तो शूट होगा और प्रोडक्ट पोस्ट में तो वो लोग सोचते हैं कि बस रात भर में हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो एड में अक्सर होता है कि उसमें टाइम बहुत कम मिलता है पोस्ट प्रोडक्शन के लिए।
अच्छा, पॉइंट वही है कि डेडलाइन क्या है। अगर कोई सीरीज ऐसे आती है जिसकी आपकी है कि डेडलाइन डिसाइडेड है कि इस दिन लॉन्च होनी है,
हाँ,
जानी है, तो फिर उसके हिसाब से डेडलाइन चलती, मतलब डेडलाइन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है,
उसके हिसाब से टाइम भी आपको मिलता होगा।
राइट, बस फर्क इतना है कि एड के लिए लोग समय कम देते हैं और सीरीज वगैरह के लिए
लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत
समय देते हैं, उनको पता होता है कितना समय चाहेगा, तो वो लॉन्च डेट से पहले ही सारी चीज डिसाइड होती है कि कितना समय देना है पोस्ट पे। एड में तो ऐसे उठ के चले आते हैं ना कि ये करना है आज की रात में देना, आप दे पाएंगे? ऐसे बात होती है।
ओके, सो ये डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम और क्या ढूंढा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक और सवाल है, क्योंकि अब डायनामिक्स काफी शिफ्ट हो रहे हैं, लाइक कंटेंट क्रिएशन इज द न्यू सिनेमा इज एवरीथिंग नाउ, ठीक है, जिसके चक्कर में ओटीटीज और सिनेमा हॉल सब खाली होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एज पर यू, इज इट अ गुड शिफ्ट? और अगर मैं इसको उस पर्सपेक्टिव से देखूं कि अब एड्स को भी हम देखते हैं क्रिएटर्स के ऊपर पैसा लगाने लगे हैं, बट उसका एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉबैक ये हुआ है कि एक जो जैसे हेमा, जया, रेखा और सुषमा सबकी पसंद निर्मा या वैस मॉल ने किया कमाल, उस तरह के एड्स अब नहीं आते हैं, वो जो होते थे कि रुक जाते थे
क्रंची, क्योंकि उस पहले क्या था ना कि ब्रांड बहुत कम थे जो टीवी पे एड फ्लोट करते थे। अभी क्या हो गया कि मतलब चाहे वो छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, मतलब पर डे वो 2-3 ऐड फ्लोट हो रहे हैं, तो इतने ऐड का जो नंबर से वो बहुत बढ़ गया है। तो और अब वो जो हुक पॉइंट है ना वो बहुत कम हो गया है। अब क्या जैसे जिंगल्स बेस्ड ऐड अब बहुत कम बनते हैं, है ना, कि वो एयरटेल की कॉलर ट्यून से ही पता, जो उनकी सिग्नेचर ट्यून थी उससे पता चल जाता था क्या है। तो उसके पीछे रीज़न यही कि अब ब्रांड अपना ही ब्रांड 10 ऐड अलग अलग तरीके का बना रहा है, तो उनका हुक पॉइंट बहुत कम हो जाता है, और लोगों को टाइमिंग का कि मेरे को 2 दिन में सब कुछ करना है। और वो सब ऐड कैसे होते थे कि प्रॉपर, मतलब उन सब चीज़ों के लिए जो डेवलपमेंट का टाइम है, स्क्रिप्ट का टाइम, वो सब बहुत ज़्यादा, आज भी ऐसा नहीं है, आज भी जो कुछ एड्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो निकल के आता है, लेकिन हाँ रजिस्टर नहीं हो पाता। उसके पीछे यही रीज़न है कि हर सेकेंड पे कुछ कुछ नया ऐड आ रहा है, तो दिमाग में नहीं हो पाता है, वो रजिस्टर नहीं हो पाता है।
एक वजह ये भी है कि अभी का, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, ऐड स्किप का ऑप्शन नहीं था, अब भी ऑलरेडी डिजिटल आने से, इतने मल्टीपल चैनल आने से, तो ऐड अगर आपका हुक पॉइंट वाला नहीं हुआ, आपने थोड़ा टाइम लगा दिया आपके फेस बनाने में, जो पहले होते थे एक एक मिनट के ऐड आते थे 30-30 सेकेंड, अब जब तक आपका पहला हुक पकड़ता है और लोग उसे तुरंत शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वजह है कि ब्रांड कोशिश करता है कि फर्स्ट 3 सेकेंड आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कि आपका स्टार्टिंग का जो 3 सेकेंड है, अगर उस तक में अगर ऑडियंस नहीं रुकी तो वो शिफ्ट हो जाती है। तो इसलिए ऐड का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। जिंगल में क्या होगा कि आप पहले म्यूजिक करेंगे अचानक से तो कुछ बोलने नहीं लग जाएंगे, तो इस वजह से पूरी ऐड की पूरी थीम सारी चेंज हो गई है।
काफी कुछ शिफ्ट हो गया है। हम जिस टाइम बड़े हुए हैं उस टाइम में तो इस तरह की एड्स हमने देखे हैं। हच को हम एक डॉग से जानते थे, एयरटेल को उसकी थीम से जानते थे, ऐसे करके वो रजिस्टर्ड है दिमाग में बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, सो वंडरफुल। हालांकि एड्स के बारे में एक थ्योरी में ये भी पढ़ रहा था कि बार 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 कंपनी चलाती इसलिए उन एड्स को, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाए, और जब आप मार्केट में खड़े रहो तो कुछ कुछ चीजों की कि एड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्रिएटिविटी का कितना स्कोप होता है। अब थोड़े से डायनामिक्स जो शिफ्ट हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो शायद आपके बहुत काम आ जाएगी। तो सर मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि अभी काफी कुछ चेंज हो गया है
जी,
वर्टिकल फॉर्मेट एक नया ट्रेंड बन चुका है
जी,
इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि क्या एडिटिंग यहाँ पर शिफ्ट होती है थोड़ी सी, या उतना ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, या आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि इज इट हैपनिंग फॉर अ गुड और फॉर अ बैड, और किस तरह से आप इसको देखते हो?
क्या होता है कि टाइम वाइज ना चीज़ें थोड़ा थोड़ा तो शिफ्ट होती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो वो अडॉप्टेशन है। तो वर्टिकल जैसे आया है कि मतलब प्रोसेस तो सब कुछ सेम है, बस फॉर्मेट रेशियो चेंज हो गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल कोई सब्जेक्ट एडिट कर रहे हैं तो भी उतना टाइम लग रहा है, अगर वो 30 सेकेंडर है वो वर्टिकल है तब भी टाइम तो उतना जा रहा है, बट उसका रेशियो चेंज है। आपके फ्रेम में चीज़ें जो पहले हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा आ रही थी अब वो वर्टिकल में आ रही हैं, तो अब वो हमें देखना उस फ्रेम में कितना क्रिस्प और कितना अच्छा बना सकते हैं। तो टाइम अगर पोस्ट प्रोडक्शन का देखें तो सब कुछ सेम है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस रेशियो चेंज हुआ। उसके साथ एक चीज़ और चेंज हुई कि जो आपका पॉइंटर्स है, विजुअली जो पॉइंटर्स हैं जहां ऑडियंस को फोकस रखना, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। वाइड रेंज में क्या होता है कि आप एक समय में 2-3 कैरेक्टर को एक साथ रखते हैं या फोरग्राउंड में या उसमें, तो आपका फोकस कई चीज़ों में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी दिखाना है आपको, वर्टिकल में कोशिश करना है कि वो सिंगल रहे, सिंगल चीज़ें, तो वहाँ पे चैलेंजिंग होता है कि कितना अच्छा कितना क्रिस्प निकाला जाए, क्योंकि वर्टिकल को स्क्रोल करने में सेकेंडर भी नहीं लगते हैं, कि जहाँ ऑप्शंस हैं कि सेकेंड में आप स्क्रोल कर सकते हैं, तो हुक टाइम ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पे, बढ़ता है आपका वर्टिकल में। जैसे वर्टिकल में भी माइक्रो ड्रामा आया, जैसे अलग अलग ऐप आए हैं जो माइक्रो ड्रामा बना रहे हैं, जो पहले सीरियल होते तो वर्टिकल हो गए पूरे, अब उनमें कंटेंट क्या होता है, हुक पॉइंट बहुत होता है, मतलब वो ऑडियंस अगर देख रही है 3 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड तो पूरा उस पर बनी रहनी चाहिए। तो वहाँ पे चैलेंज ये है कि आपका प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो चीज़ें हैं वो वर्टिकल हैं, हमें क्या फ्रेम में रखना है क्या नहीं रखना है, ये आपका प्रोडक्शन में शूट जब शूट कर रहे हैं तो आपका डिसाइड होना चाहिए। फिर आप जब प्रोडक्शन पोस्ट पे आते हैं तो ऑब्वियसली बात सब कुछ वही रहेगा, म्यूज़िक भी वैसे ही बनेगी, साउंड इफेक्ट भी वैसे लगेगा, कलर भी वैसे ही होना है, और जो भी ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ, बस रेशियो चेंज हुआ, बट चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है।
इसमें जैसे आपने बोला कि ये अच्छा है या बुरा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपडेशन बुरा होता है, रोल आपका वही रहता है। हो सकता है थोड़ी चीज़ें शिफ्ट होती हैं, जैसा दिवेश ने बताया कि रोल क्रिएटिविटी का वही है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ। रील में कभी भी ऐसा नहीं होता है, मतलब मैं फिक्शन रील की स्पेशल बात कर रही हूँ, माइक्रो ड्रामा की बात कर रही हूँ, पूरा पूरा कंटेंट वैसे ही डिज़ाइन होता है, वैसे ही शूट होता है, वैसे ही उसका पोस्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस फ़र्क वही है कि आपके पास ऑप्शन है देखने का तो आप शिफ्ट जल्दी करते हैं। तो इस केस में बहुत ही कंटेंट के मामले में बहुत क्रूशियल टाइम कह सकते हैं, कि पहले लोग समय देते थे, एक स्टोरी बिल्ड होती थी, जैसे एक किताब लिखी जाती है तो उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है, अभी प्रस्तावना वाला समय गया, हम हुक पॉइंट ढूंढते हैं कि सबसे पहले एपिसोड का हुक पॉइंट क्या होगा, यानी वो कैसे होगा कि वो पूरा ऑडियंस उसको पकड़ के रखे, ऑडियंस शिफ्ट ना करे, तो बस ये थोड़ी सी स्टाइल चेंज हुई है, बाकी एफर्ट इज सेम।
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायनामिक शिफ्ट हुए हैं इनसे ओवरऑल हमारा जीवन भी काफी शिफ्ट हुआ है। जब ये फिल्में आती थी या जब इस तरीके से काम होते थे तो जीवन बहुत स्लो हुआ करता था।
बिल्कुल,
एक रूटीन था हमारा, सुबह निकलेंगे दफ्तर जाएंगे, शाम को आएंगे, खाना खाएंगे, दोस्तों के साथ बैठेंगे, सो जाएंगे। जब से ये आया ना अंगूठा तेज चलने लगा, तब से मुझे लगता है सब कुछ ही तेज हो गया। ठीक है, अब अंगूठा इधर चल गया है तो किक कॉमर्स भी आ चुका है। ठीक है, वो इतना ही इजिली डिप्रेशन भी आ रहा है, उतना ही इजिली मेंटल हेल्थ भी हमारी खराब हो रही है।
राइट, राइट।
तो बहुत कुछ वहां पे गड़बड़ तो हो रहा है। बहरहाल WCA पोस्ट स्टूडियो वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूंगा कि जो लीडिंग स्टूडियोज है इंडिया के पोस्ट प्रोडक्शन के, उनमें काउंट किया जाता है। फ्रॉम WCA's पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बिजनेस में कितना चेंज आया है इन दिस यू नो शिफ्टिंग डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल? क्या आप क्लाइंट डिमांड करने लगे हैं कि हमें वर्टिकल भी दो, आपके पास वर्टिकल काम भी आता है, या हॉरिजॉन्टल में से ही मांगा जाता है, या कैसे काम करता है?
काम बढ़ गया है। कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट, जब स्टार्टिंग में आया था तब क्लाइंट अक्सर करके वो छोटा कह के मांग लेते थे कि इसका एक कट चला जाएगा। अब हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट हो गए कि कितने कट चाहिए, कितने रेशियो चाहिए, क्योंकि वो एक एफर्ट है, वो अपने आप में एक एफर्ट है। आपकी एक फिल्म कट गई, पूरी कट गई, अब अगर उसके रेशियोज निकालने, उसके कट निकालने, कुछ भी करना है तो वो एक एफर्ट है। तो नो डाउट काम बढ़ा है, और पे आउट अगर आप डिमांड कर पाएँ और अच्छे से ले पाएँ तो डिमांड भी करनी चाहिए, क्योंकि उसको हल्के में अगर आपने डिलीवर कर दिया तो वो एक एफर्ट है, वो फिर आपने अपनी स्किल को एक तरह से बहुत सस्ते में निकाल दिया।
हाँ, तो वही कोई मतलब काम तो बढ़ा है, ऑब्वियसली बात है। पहले एक फिल्म आती थी, आर्ट फिल्म आई कि 30 सेकेंडर है, अब उसमें वेरिएशन आता है कि नहीं मुझे एक 4:5 चाहिए, एक 1:1 चाहिए, इतना चाहिए, तो कट्स रेट ज़्यादा हुआ। तो जैसे सपना कमर्शियल संभालती हैं तो ये कहते हैं कि भाई इसका इतना कट होगा, उतना इतना चार्ज बढ़ेगा। तो हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो देखा जाए, पे आउट भी बढ़ा है उससे, और क्लाइंट को भी फायदा होता है, एक कट में उनके इतने कट मिल जाते हैं फ्लोट करने के लिए, टीवी पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, फेसबुक पे चलाना है, तो वेरिएशन सेम ऐड का बन जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग ऐड शूट करते हैं तो ध्यान नहीं देते कि मुझे वर्टिकल भी काटना है, हॉरिजॉन्टल में शूट कर लिया, तो वो थोड़ा सा मैचिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो ध्यान रखते हैं तो फिर वो वर्टिकल में अच्छा निकलता है और वो हॉरिजॉन्टल में भी अच्छा निकलता है।
जैसा देवेश ने बोला कि ध्यान क्या रखना पड़ता है, इसमें मेन मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वर्टिकल फॉर्मेट चाहिए, अगर आपका डिसाइडेड है, तो आप हमेशा शूट को ध्यान में रख कर करिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल को पॉइंट रख के किया तो आप वर्टिकल में वो ब्यूटी नहीं आती है। हॉरिजॉन्टल अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल के टाइम ही आपको सेंटर में सब कुछ रखना पड़ता है, आपको माइंड में रखना पड़ता है कि वर्टिकल जाएगा तो सब कुछ सेंट्रलाइज डिज़ाइन करना पड़ता है, तब वो फिर आपका कभी भी ये महसूस नहीं होता कि ये वर्टिकल शूट नहीं हुआ है। अदरवाइज जब हॉरिजॉन्टल से ही जब कट होके आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक लैग दिखता है वर्टिकल, क्योंकि बहुत ही क्लोज फ्रेम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लैग दिखता है, उसको कितना भी आप एडजस्ट करिए बट वो लगता है कि हाँ, या तो एकदम ही एकदम क्लोज शॉट आ जाएगा जिसमें आप समझ नहीं पाएंगे, फिर उस केस में लोग हाफ हाफ कट करके लगाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन लगाते हैं। तो बेटर है कि अगर आप वर्टिकल जाना ही है आपको, ब्रांड से पहले पूछ लेना चाहिए कि आपका मेन पर्पज़ क्या है। कुछ ब्रांड होते हैं जो कहते हैं ठीक है ऐड है, हॉरिजॉन्टल तो हमें चाहिए ही चाहिए, शूट हो रहा है, लेकिन हमारा मेन फोकस वर्टिकल है, हमें मेन इसको इंस्टा पे फ्लोट करना है। उस केस में आप तो खासकर सिर्फ वर्टिकल को फॉर्म में रख के करिए और हॉरिजॉन्टल पे बस थोड़ा ध्यान दीजिए। और कहीं कहीं होता है कि नहीं मुझे सिनेमा ऐड चाहिए, मुझे टीवी पे चलाना है, वर्टिकल आप दे देना, इंस्टा पे देख लेंगे, तब बात अलग है। तो ये सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए ब्रांड से, उसके बाद ही काम करना चाहिए।
ओके सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, इस एक सिनेरियो में आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि क्या चीज़ें वो कर सकते हैं? ऑब्वियसली हर इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक स्टूडियो के पास चला जाए।
बिल्कुल बिल्कुल,
बट वो खुद से अगर करना चाहे तो क्या क्या चीज़ें उसे ध्यान में रखनी होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, कितने टूल्स चाहिए?
तो अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो सबसे पहले अगर आप जो भी रील आपको शूट करनी है उसका एक आउटलाइन स्क्रिप्ट जरूर रेडी करिए, और उसमें क्रंच आप निकाल लीजिए कि मेरे को ये चीज़ें रखनी है और इतना ही शूट करना है। शूट के टाइम में ठीक ठाक कैमरा होना चाहिए, अदरवाइज़ आईफोन से भी कर सकते हैं आप, और अगर कैमरा है तो अच्छी बात है। आपका बेसिक कैमरा सेटिंग जो कर लेता हो आपका डीपी जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, कैमरा जो चला रहा है, वो थोड़ा सा नॉलेजेबल होना चाहिए। जिससे क्या होता है आपकी फ्रेमिंग, आपका डे में शूट कर रहे हैं तो कितना ओपन रखना है, एक्सपोजर कितना नहीं रखना है, वो अच्छा रहेगा। फिर आप जब एडिट कर रहे हैं तो आपको एक एडिटिंग अच्छा सॉफ्टवेयर, जो भी प्रीमियर FCP जो भी यूज़ करते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। साउंड के लिए आपके पास, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बजट नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी होती है साउंड की बहुत सारी, जहाँ पर आपको एक मिनिमम पे आउट करके आपको मिल जाती है। तो आपने साउंड वहाँ से ले लिया, एडिट वहाँ पे कर लिया, और आपको अगर कलर करना है तो कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची रिजॉल्व एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री वर्जन भी आता है, आप बेसिक कलर्स पे कर सकते हैं, अदरवाइज प्रीमियर पे भी कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से शूट किया आपने, शूट करके आपने एडिट पे किया, एडिट पे आपने पूरा उसको पैकेजिंग कर ली अच्छे से, और फिर उसको आप अच्छे से एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका कंटेंट आप इंडिविजुअली भी उसको कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जब आप शुरू में, जब आपका लोड बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात आप सबमिट कर सकते हैं, बट हाँ वहाँ पे आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि चीज़ें अच्छी निकल के जानी चाहिए।
इसमें मैं एक एडान चाहूँगी कि जैसे आपने इंडी फिल्म मेकर्स की बात की, तो इंडी फिल्म मेकर्स का पर्पज़ क्या है, मतलब क्या वो एड शूट पे जा रहे हैं या वो फिल्म फेस्ट के लिए फिल्म बना रहे हैं? तो इंडी जो फिल्म मेकर्स हैं उनको पहले ये डिसाइड कर लेना होगा कि वो कर किस लिए रहे हैं। कॉमर्शियल का पूरा ही सिनेरियो डिफरेंट होता है, जो मैंने बताया कि ब्रांड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और आपका सिनेरियो फिल्म फेस्ट के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जब फिल्म फेस्ट या शॉर्ट फिल्म वगैरह पे जाते हैं तभी लोग इंडी फिल्म पे जाते हैं। एड वगैरह के लिए अगेन आपको डिपेंडेंसी रखनी ही पड़ती है अलग अलग मैन पावर के लिए और स्टूडियोज़ के लिए। तो इंडी फिल्म मेकर्स का है, जैसे शॉर्ट फिल्म जा रहे हैं तो QC का ज़रूर ध्यान रखें, वो प्री प्रोडक्शन पे ही पूरा ध्यान रखें कि किस फॉर्मेट पे आपको चाहिए। इतना टेक्निकल नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, आप कहीं से भी उसको सीखें, आप YouTube से सीखें, आप कुछ मेंटर्स हैं बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस देते हैं, आप उनसे क्लासेस लें, तो मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब नॉलेज है तो आप खुद करें या किसी से करवाएं, बट नॉलेज ज़रूरी है।
ओके सर, यहाँ पर आपने कुछ टूल्स के नाम लिए, प्रीमियर, डाविंची। फिल्म अगर हम एडिट करते हैं तो उसको हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं उनके लिए?
तो फीचर फिल्म अभी इस समय जो इंडिया में काम होता है ज़्यादातर एडोबी प्रीमियर पे होता है। दूसरा एविट मीडिया कंपोजर एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, बहुत पुराना है, बहुत कुछ लोग उसको भी यूज़ करते हैं, बट प्रीमियर पे भी, एडिट प्रीमियर पे होता है, कलर डाविंची पे, और बेस लाइट एक सॉफ्टवेयर और है उस पर होता है। ये दो मेन सॉफ्टवेयर हैं जिन पे काम होता है। फिर अलग अलग टूल्स हैं, वो बहुत कोर में जाते हैं, VFX में अलग हैं, 3D में अलग हैं, बट बेसिक एडिट जो है वो एडोब प्रीमियर और एविट पे ही होता है।
तो अभी तक ये बातचीत में इतना समझ आया, चाहे आप वर्टिकल फॉर्मेट के एडिटर बनना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, एड बनाना चाहते हैं, प्रीमियर प्रो एक सही विकल्प हो सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल, प्रीमियर प्रो अच्छा विकल्प है और अच्छा कर सकता है।
तो बहुत ज्यादा फैंसी टूल्स नहीं चाहिए?
नहीं मतलब फैंसी तो ऐसा नहीं कहेंगे, ये बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट प्रीमियर प्रो, और इसमें क्या होता है कि फैंसी ऐसा कह लें कि जो अभी 2-3 और नए नए कुछ सॉफ्टवेयर्स आए हैं वो फैंसी हो सकते हैं, बट फैंसी का मतलब ये होगा लिमिटेड चीज़ें हैं वहाँ पे, आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उनके पास बहुत लिमिटेड कुछ प्लगइन्स है, कुछ चीज़ें हैं जिसको फटाफट करके देना, बट मैं उसको इसलिए सजेस्ट नहीं करता, वो आपके लिए सेल्फ किलिंग होती है, क्योंकि आप एक रॉन्ग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, फिर चीज़ें अगर वो गलत हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो आप एक गलत चीज़ सीख रहे हैं। तो आप शुरुआत ही एक ढंग की चीज़ों पर करिए, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा या अच्छा होगा, जहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रीमियर, फाइनल कट प्रो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन अभी इंडिया में थोड़ा कम हो गया, नहीं पहले बहुत यूज होता था, बट सबसे ज़्यादा जो अभी यूज़ हो रहा है वो प्रीमियर प्रो यूज हो रहा है, और आपका एविड और फाइनल कट प्रो यूज होता है, और इसी को ही यूज करना चाहिए, इंडस्ट्री में इसी की डिमांड है।
जी विशाल भारद्वाज सर जो की फिल्म मेकर है, उन्होंने एक बात बोली, उनसे पूछा गया था कि व्हाट्स द चीपेस्ट टूल टू मेक अ फिल्म इंस्टेड ऑफ पेन। तो एज अ एडिटर अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूं, व्हाट्स द चीपेस्ट टूल टू यू नो डू द पोस्ट प्रोडक्शन, तो आप क्या क्या उसमें लेकर आओगे?
चीपेस्ट टूल पोस्ट प्रोडक्शन, अगर मैं ये कहूँ कि चीप है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है आज के समय में, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितने भी पेड सॉफ्टवेयर हैं वो हैवी चार्ज करते हैं और वो पैसे लेते हैं, फिर वही चार्ज स्टूडियो आगे
क्लाइंट। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, बेसिक टूल्स कौन कौन से हैं जिनके साथ किया जा सकता है, नॉट टॉकिंग अबाउट फीचर्स।
हाँ हाँ, तो बेसिक टूल देखिए क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडो में भी ना एक टूल्स आता है एडिट कट करने के लिए, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उस पर भी कट कर सकते हैं फिल्म को। आपको अगर शुरुआत करनी है, जैसे हमें कहीं जाना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, साइकिल है, तो आपको एडिट करना है और आपके पास फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर एडिट का, तो आप वहाँ से भी कट कर सकते हैं। सबका कैनवास सेम है, जो कैनवास है ना वो सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो आपको बहाना नहीं ढूंढना है कि मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास ये टूल नहीं है। नहीं, साइकिल है मतलब आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में एक एडिट टूल है, आप करो उसमें एडिट करो, फिर आगे जाओगे तो गाड़ी मिलेगी, यानी एडोब प्रीमियर मिल गया, आप उस पर करो। तो आपको शुरुआत करने के लिए कोई बहाना नहीं, बहुत ऑप्शंस हैं आपके फ़ोन के अंदर। VN ऐप आता है, एडिट कट प्रो, ऐसे अलग अलग ऐप आते हैं जो आप ऐप से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये मतलब ये इस इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरती है कि कहीं भी कोई चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ये करने के लिए यही ज़रूरी है, शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं।
So amazing. कुछ मेरे और सवाल है, फिक्शन वर्सेस नॉन फिक्शन की एक मैं बात करना चाहूंगा, एडिटिंग अप्रोच कैसे चेंज होती है इन दोनों फॉर्मेट्स में?
बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि फिक्शन में क्या होता है, आपके पास सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, प्रॉपर एक फॉर्मेट में शूट होके आई हुई रहती हैं। तो फिक्शन में एक तरीके से आपके पास सब कुछ सेट है, आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, शूट की हुई हैं, तो आपको उसको एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको निकालना है। नॉन फिक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर डिसाइड तो वहाँ भी हो रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन वे में नहीं होती। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए, अब आप जहाँ पे शूट करने गए वहाँ अकॉर्डिंग टू शूट वहाँ पे उस तरीके की इन्वायरमेंट नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत डस्ट है, चीज़ें हैं, फ्रेमिंग में पीछे कुछ अलग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो वहाँ आप एडिटर का स्मार्टनेस है, अब जितने शॉट आए हैं उसमें से कितना अच्छा हम निकालें जो विजुअली कम्युनिकेट अच्छे से करें। अगर किसी चीज़ को भी दिखाना है ना विजुअली कम्युनिकेशन में, अगर गरीबी को या अमीरी किसी को भी दिखाना, वो वे बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब किसी ख़राब चीज़ को भी अच्छे वे में ही प्रेजेंट करना है आपको, विजुअली जो दिखने में अच्छा लगे। तो ये मतलब बहुत ब्रूटल चीज़ है, बट ये फैक्ट है। तो नॉन फिक्शन का अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है, फिक्शन का बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉन फिक्शन में आपके पास प्लेट में सजी हुई चीज़ें बहुत कम होती हैं, आपका दिमाग ज़्यादा लगाना है, हो सकता है आपको कुछ डाउनलोड करना पड़े, कहीं निकालना पड़े, आपको जो आप सोच रहे हो उस तरीके के शूट ना हो के आया हो, उस तरीके की लोकेशन ना मिली हो, उस तरीके का कलर पैलेट ना मिला हो, बट आपको टेबल पे बनाना है। फिक्शन में ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर सब कुछ सेट करके रखता है, डायरेक्टर आर्टिस्ट सब कुछ अच्छा होता है, तो आपको वहाँ पे बहुत लिमिट, मतलब आपको सब कुछ एक बॉक्स में मिलता है। वहाँ पे मतलब अलग अलग बिखरी हुई चीज़ें होती, किसी का इंटरव्यू लिया आपने, उसने 20 टेक लिया है, अब 20 टेक में भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो रियल बंदा है, उसे नहीं पता कैसे हमें बोलना है, तो अब वो बाइट दे रहा है, अपनी सक्सेस बाइट दे रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, तो आपको कितनी ब्यूटीफुली उसमें से उसकी बात निकालनी है और उसको निकाल के ऐसा लगाना है कि पता ही ना चले कि इसमें कट लगे हैं, आपको बी रोल्स जो लगाने हैं वो अच्छे से लगाने हैं। तो नॉन फिक्शन का अप्रोच और फिक्शन का बहुत डिफरेंट हो जाता है, इवन एडिटर भी इंडस्ट्री में बहुत अलग वे में काम करते हैं।
राइट नहीं, जैसा देवेश ने बताया, मैं इसी पे एड ऑन ये कहना चाहूँगी कि नॉन फिक्शन में एक्चुअली रनिंग स्क्रिप्ट चलती है, फिक्शन में एकदम प्रॉपर स्क्रिप्ट चलती है, और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो एडिटर्स हैं उसमें भी, मतलब कुछ ही एडिटर्स ऐसे हैं जो दोनों पे कमांड रखते हैं, अदरवाइज एडिटर में भी डिवाइड होते हैं कि किसी का फिक्शन पे हाथ बहुत अच्छा है, किसी का नॉन फिक्शन पे बहुत अच्छा है। तो जनरली मतलब एडिटर इज़ नॉट ए कटर, दे आर अ स्टोरी वीवर, तो वो डायरेक्टर के साथ जो रोल प्ले करते हैं, तो फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों कैटेगरी बहुत डिफरेंट है।
ओके, सो वंडरफुल। एक इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं यहाँ पर, शायद आपने कभी काउंटर किया होगा, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका प्रोडक्शन हाउसेस है, तो उनके साथ ये आमतौर पर होता है कि कई बार कोई एड अगर नहीं चली या कोई मूवी शॉर्ट फिल्म बनाई नहीं चली, तो डायरेक्टर आके या प्रोड्यूसर आके वो पोस्ट प्रोडक्शन वाले का गला पकड़ता है कि तुमने अच्छा एडिट नहीं किया इसलिए नहीं चला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर ऐसा ब्लेम आया हो कुछ?
नहीं, यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सेफ जोन में रहता है।
okay.
क्योंकि सब कुछ उनके डिसीजन पे होता है। हमने अपना एक जो हमारा वो थॉट प्रोसेस था हमने बता दिया, चीज़ें कर दिया, अब उनके अंडर में वो सारी चीज़ें निकलती हैं। मतलब जो उनका एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब तक वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती आउट जाता ही नहीं है कभी भी ना, तो अगर चीज़ें सक्सेस नहीं हुई तो वहाँ पोस्ट प्रोडक्शन का कोई रोल, उसने अपना अच्छा काम किया। हाँ, अब काम अच्छा ना किया हो वो अलग चीज है, है ना, तू जो फ्रंट पे एक लेमैन भी पकड़ ले रहा है तो वो तो फिर मैं ये कहूँगा वो डायरेक्टर की गलती है कि आपने अपनी चीज़ को टेबल पे अच्छे से रिव्यू नहीं किया, आपने क्यूसी नहीं किया अच्छे से, जो ऐसी चीज़ों को जाने दिया। जैसे बीइंग ए स्टूडियो हम लोग की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग क्रिएटिवली ये चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा जो क्यूसी होता है, क्वालिटी चेक होता है, वो इतना मतलब हम इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे इनसे कोई चीज़ें खराब नहीं जानी चाहिए। फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कैसा कर रहा है वो अलग की चीज़ है, वो हम लोग पहले किसी चीज़ को पहले हम लोग चेक करते हैं, सपना चेक करती हैं, मैं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद वो लोग चेक करते हैं। तो वहाँ पे जो क्वालिटी चेक का फिल्टर है बीइंग ए स्टूडियो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो चीज़ें अच्छी ही निकलती है और उससे सक्सेस ही रहता है ऑलमोस्ट।
ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से कुछ क्यूसी कर रहे हैं और क्लाइंट से भी करा रहे हैं, सो आप थोड़ा सेफ जोन में चले जाते हो।
जी
अच्छा, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा रहा है अगर आप शेयर कर सकें तो?
ऐसे तो एक्चुअली क्या होता है बीइंग इस इंडस्ट्री में, अगर बाई पैशन है अपना तो एक मतलब कोई भी छोटी फिल्म भी होती है ना तो वो भी ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस फिल्म को आपने आप खुद बना के और आप घर जाके उसको प्लेबैक करके देख लिए वो प्रोजेक्ट बड़ा ही हो जाता है। तो इसलिए मतलब अगर हमसे ऐसा पूछे कि यार ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे हमारे एप्पल टीवी पे सीरीज़ गई थी, बहुत प्यारी स्टोरीज हैं वो सिंगर्स के ऊपर बनी हुई हैं, अब ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ी बहुत अच्छी स्टोरी है, चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे आती हैं, बट उनके बाद भी ऐसी कुछ छोटी छोटी फिल्में भी गई हैं जो गवर्नमेंट की फिल्में रही हैं, वो भी हमें देख के मज़ा आता है। हमने दिल्ली पुलिस के लिए एक फिल्म बनाई थी 112 के लिए, वो आज भी फिल्म हम देखते हैं तो हमें खुद मज़ा आ जाता है, मतलब नॉन फिक्शन रियली उनके उनकी कॉरपोरेट फिल्म है, किस तरीके से वो काम करते हैं, हम लोग का विज़न चेंज हो गया पुलिस वालों के लिए जब हम उनके कॉल सेंटर में जाके देखा, उनकी मेहनत देखी, तो और हम जब उसको एग्जीक्यूट करके जब प्रेजेंट हुए उन लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की। तो मतलब ये बड़ा मतलब ऐसा पॉइंट है कि हमारे लिए तो सारे प्रोजेक्ट बड़े ही रहते हैं ऑलमोस्ट।
काफ़ी अमेजिंग पार्ट है कि आप पैशन से यहाँ पर हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए वो सेम रहती हैं। क्या अभी भी ऐसा होता है इतने सालों के बाद कि डेली वो मोटिवेशन है, या अभी ऐसा हो गया है ठीक है यार कटी तो मारना है और हो गया है?
नहीं एक्चुअली नहीं, डाउन तो नहीं हुआ, इवन हर दिन एक मोटिवेशन ही रहता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा ये हमारे पोस्ट की मतलब जब आप इस इंडस्ट्री में होते हैं, सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन ही नहीं, आप इस इंडस्ट्री में तो हर टाइम कुछ नया करने को मिलता है, और स्पेशली हम लोगों ने खासकर किसी एक जॉनर पे काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल जॉनर आते हैं, मतलब जैसे कोई कोई प्रोडक्शंस होते हैं कि उन्होंने एक कोई थीम पकड़ी कि किसी का लेक्चर शूट कर रहे हैं तो लेक्चर ही कर रहे हैं, किसी का प्रोडक्ट वीडियो बना रहे हैं तो प्रोडक्ट वीडियो ही बना रहे हैं। आई डोंट नो, हम लोग ने शायद क्योंकि बाई पैशन है तो हम लोग को नया नया काम करने में मज़ा आता था, इधर इट इज़ प्रोडक्शन और पोस्ट, तो पोस्ट में भी हमारे साथ अभी भी यही है कि एड फिल्म आ जाती है, फिर कहीं सीरीज़ आ जाती है, फिर डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, फिर सॉन्ग आ जाता है, तो हमेशा एक नया नया जो एक प्रोजेक्ट रहता है ना, इससे हमारा मोटिवेशन डाउन होने ही नहीं पाता है, और हर दिन एक चैलेंज के रूप में होता है, किसी में पता चलता है कि आज डेडलाइन बहुत फास्ट है, आज तो नाइट जानी है तो एक मोटिवेशन अपने आप में रहता है, और पैशन है तो हम लोग को बुरा नहीं लगता, मतलब
शेड्यूल पूरा हिल जाता है, बट यू लव इट।
हां,
क्या बाहर का काम आता है?
बाहर और कंट्री के बाहर?
हाँ
आता है, हम लोग अभी नीदरलैंड का एक क्लाइंट है हमारे साथ, उनके साथ हमारा रिटेनरशिप है, वो वहाँ से शूट करते हैं हमारे क्लाउड पे, वो डंप करते हैं डेटा, हम लोग प्रॉपर पोस्ट करके उनको डिलीवर करते हैं। यूएस के भी एक दो क्लाइंट हैं जो बीएफएक्स का काम और कलर का काम आता है।
ओके, तो आप सर्विसेज सारी प्रोवाइड करते हैं, कलर ग्रेड, बीएफएक्स,
सारी चीज़ें
वन स्टॉप सोल्यूशन है हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन का, यानी कि आप शूट करिए उसके बाद आपकी चिंता खत्म, आप हमारे यहाँ ला के डाटा डंप करिए उसके बाद आप फाइनल फिल्म ले जाइए।
Yes. और अगर यहाँ पर मैं आपसे एक बात करना चाहूँ सर, मुझे एक पर्सनल एक क्यूरियोसिटी है, मतलब मुझे पता है यहाँ पर ये रेलिवेंट नहीं है, शायद आप उस टाइम पेरेट नहीं करते होंगे, जो बहुत पुराने जमाने में फिल्में बनती थी वो टेप आया करती थी, वो रोल जो हुआ करता था
राइट,
उस पे होता था, उनकी एडिटिंग कैसे हुआ करती थी?
तो उनमें क्या होता था, वो बहुत प्लान्ड वे में काम करते थे कि उनका ये था कि वो रोल तभी करते थे जब एक्टर रेडी हो जाता था, शायद उनमें रीटेक भी बहुत कम हुआ करते रहे होंगे, तो इसलिए क्लैप बोर्ड जो यूज होता था उसका मेन यूज इसीलिए होता था कि एडिटर को बहुत इजी हो कट लगाने में कि ये फाइनल टेक है, और वो और उन पूरा मैन्युअली करते थे वो लोग। इवन जो आज डिसॉल्व हम लगाते हैं वो भी वो लोग मैन्युअली आई थिंक डिसॉल्व लगाते थे पहले, कुछ क्रॉस करके रील में, जो मैंने सुना है जो सीनियर्स ऐसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बताते हैं, तो पूरा मैन्युअली प्रोसेस होता था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे, इस टाइम पे आज होता तो हमारा जो स्टूडियो वो कितना बड़ा लैब में होता, कितने मतलब पूरे केमिकल लैब और वो सारे बहुत बड़े एक 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 इंडस्ट्री टाइप में वो होता है अभी भी जहाँ पे है न्यूयॉर्क या कहीं पे एक कोडेक का अपना, तो वो प्रॉपर बहुत प्रोफेशनल, मतलब हर चीज़ें मैकेनिकल है। तो वो एडिट जो कट होता था वो प्रॉपर इवन
रील पे कट होता,
रील पे कट करते, सीजर से कट कर कट मारते थे एग्जैक्टली, कि यहाँ से कट मारा, यहाँ से कट मारा, अब इस रील को हटा के फिर उसको वो ऐड करते थे, कुछ टेपिंग होती थी उससे वो जोड़ते थे, मैन्युअली पूरा काम करते थे वो लोग।
पहले फिल्म मेकिंग मुझे लगता है ज़्यादा टफ थी, अभी भी है सेम वे में है, लेकिन अब डिजिटल आने से थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो गया है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि फिर अब लोग ना पहले से तैयारी नहीं करते, वो कहते हैं रिटेक ले लेंगे, कार्ड ही तो है, फॉर ग्रांटेड ले लिया। पहले एक थिएटर की तरह तैयारी करते थे कि मतलब सीधा ऑडियंस पे जाना है, ये जो रील है ये मतलब वेस्ट हो रही है, उसकी अपनी एक कॉस्ट होती थी। अभी के टाइम में थोड़ा सा लोग हल्के में लेते हैं कि ठीक है डाटा ही तो है, हटा देंगे, चलो हमारे पास स्पेस है, हार्ड डिस्क है, कोई टेंशन नहीं है, शूट करो। तो ये बस एक फर्क है,
क्योंकि अभी जो क्लटर जो जैसे आप डिस्कस कर, क्लटर जो कलेक्ट होने लगा वो मेन यही है कि अब वो वेस्टेज, जैसे स्टोरेज हमारे पास ज़्यादा हो गई कि ठीक है 10 टेक ले लिया कोई बात नहीं, एक्टर प्रिपेयर होके नहीं आया कोई, पहले ऐसा नहीं होता, 10 टेक मतलब पूरा रोल खत्म हो गया, एक कॉस्टिंग होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होते थे वो रोल, तो वो लोग बहुत प्रिपेयर होके तभी रोल करते थे, ताकि एडिटर को मैन्युअली काटना है सारी चीज़ें एकदम हाथों में, जो हम सीजर आज देखते हैं ना डिजिटल टाइमलाइन पे, अगर आपने कभी देखो ऐसा कट, वो पहले हाथ से काटते थे,
तभी शायद वो नाम मिलेंगे। बट ये सर आपको नहीं लगता कि अगर कोई एक इंसान है जो इस माइंडसेट से चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें क्लटर कर रहा है, पूरी पूरी कवरेज करे जा रहा है, एक शॉट की जरूरत है, 40 शॉट ले लिए, उससे वो एक कंफ्यूज्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है।
हाँ, वो एक तरीके से इमेच्योरिटी भी कहते हैं, जब आप बहुत परफेक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ों में। एक मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा डायरेक्टर है ना, मैं उसके डेटा देख के समझ जाता हूँ, अगर वो डेटा साइज उनकी फिल्म के ड्यूरेशन से ज़्यादा है तो मैं समझ जाता हूँ डायरेक्टर कहीं ना कहीं फियर में था, अदरवाइज वो जो जिनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, जिनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो क्लटर आज भी नहीं कलेक्ट करते हैं। वो एक्टर से कोई मिस्टेक होता है, टेक्निकल कोई हुआ वो लिया, या एक दो सेफ्टी जोन ले लिया। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे लोग 10-10 टेक इस एंगल से भी उसे, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि डिजिटली है, ले लो, देखा जाएगा एडिट पे। तो इससे पोस्ट प्रोडक्शन का कोई नुकसान नहीं होता, टाइम बढ़ता है, वो बिलिंग बढ़ती है, लेकिन प्रोड्यूसर की जेब खाली होती है उससे।
अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आने वाला था इसके ऊपर, कि ये जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है ये प्रोजेक्ट बेसिस पे पैसे होते हैं या डे बेसिस पे होते हैं?
दोनों तरीके से होते हैं, बट जैसे तब भी डेज और मैन पावर काउंट हमेशा होता है। जैसे मान लीजिए कोई फीचर फिल्म है तो उसमें हमने डिसाइड कर लिया कि 100 डेज है इसका टाइम, इसमें ये काम होना है, हमारे एंड से हो जाएगा, आपको भी ध्यान रखना है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये डेज वाइज फिर वो चार्ज ऐड होगा, अगर 10 डेज 15 डेज तो वो फिर एक बल्क मतलब एक रेट डिसाइड होगा, तो उसमें ये बनेगा। एक होता आवर वाइज, मान लीजिए एक फिल्म है, फीचर फिल्म है, उसे हम कलर कर रहे हैं, तो हमने उनको बोला कि 100 आवर्स का इसमें टाइमिंग हमारी तरफ से है, इस टाइमिंग में हम इस फिल्म को कलर करेंगे और आपको इस टाइम में अवेलेबल रहना अपनी QC चीज़ों के लिए। अगर इससे ज़्यादा आपका बढ़ता है, आप टाइम ज़्यादा लेते हो, हमारे टाइम से तो नहीं जाएगा बट आप टाइम लेते हो, तो वो आवरली जो रेट होगा वो बढ़ेगा। दूसरा होता है कि प्रोजेक्ट वाइज हो जाता है कि ठीक है, मतलब बट हाँ ये टाइमिंग ज़रूर इंक्लूड रहती है किसी भी प्रोजेक्ट, अदरवाइज़ वो लॉस का प्रोजेक्ट हो गया। मान लीजिए एक मिनट की फिल्म है और किसी एक मिनट की फिल्म में अगर वो 5 दिन चला गया और कॉस्टिंग 2 दिन की लगनी है, तो 3 डेज तो आप माइनस में चले गए। तो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को क्लियर होता है कि मेरे को इतनी कॉस्टिंग है, मेरे को 2 डेज में निकालनी है, तो वो भी कॉन्सेप्ट, वो भी प्रिपरेशन में रहते हैं। या उनका अगर बहुत लोग कहते हैं मेरा कॉस्ट बहुत कम है मेरी मुझे, तो हम बोलते हैं उनको पर डे की कॉस्टिंग पे आप काम कर लो, आप एक दिन में निकाल लो, तो वो उस उनका भी काम हो जाता है और हमारा भी।
ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा अबाउट AI। आपकी फील्ड में एआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है?
बिजनेस को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है, एआई पे हम लोग ने अभी एक अपना नया और वेंचर शुरू किया है WCAI स्टूडियो, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी एआई को कि किस ढंग से हम फिल्म मेकिंग में एआई को नए नए जो डिमांड्स आते हैं उनको एड ऑन कर सकते हैं. तो वो अभी चल रहा है बट कहीं से भी कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना काम में, ना बिजनेस में, ना चीज़ों में, क्योंकि फिल्म मेकिंग रॉल्स रॉयस कार है. वो जो खरीदते थे शुरू से वो अभी भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे, उनकी चॉइस कभी चेंज नहीं होने वाली. बाकी गाड़ियां ऐड हो गई, उसी तरीके से एआई ऐड हुआ है, एक ऑप्शन ऐड हुआ है, तो वो उसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट वो रॉल्स रॉयस को नहीं रिप्लेस कर पाएगा.
वैसे देवेश ने इसे कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे से. तो अपडेशन कभी भी हम लोग को बुरा नहीं लगता और मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी बुरा है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग स्किल्ड होते हैं. हो सकता है अगर हम इस पे ही रहें कि अगर जस्ट सपोज कोई बिल्डिंग बन रही है, अगर हम मशीनरी पार्ट से ना करके आज भी लेबर को लगा के सारे काम कराएं तो सब कुछ प्रोसेस स्लो हो जाएगा. तो अगर कोई चीज़ अपडेशन आता है, एआई है, वो हमारे चीज़ों को इन्हांस कर रहा है, वो हमारा हेल्पिंग हैंड है. तो इसको अगर हम हेल्पिंग हैंड के तौर पे लेंगे तो हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं. तो अपग्रेडेशन मुझे नहीं लगता कभी फियर का रोल प्ले करता है, फियर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
तो आप दोनों से बात करके मुझे इतना समझ आया है कि आप दोनों बहुत अच्छे लर्नर हैं और बहुत फ्लेक्सिबल हैं, कि एआई आया है तो आप उसको भी पॉजिटिव वे में लेके उसका भी सोच रहे हैं कि कैसे कुछ किया जा सकता है. कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप लोग अपने मन में लेकर आए हो, प्लीज फील फ्री, जो भी आपको कहना कह दीजिए, और WCA के बारे में जो भी कहना है प्लीज फील फ्री.
अभी पोस्ट प्रोडक्शन को लेके बहुत सारे सवाल लोगों के रहते थे और आए दिन हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में जो फेस करते थे कि लोग गलतियां करके लाते हैं शूट पे, इंडी फिल्म मेकर्स खास करके जो काफ़ी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों में गलतियां करते थे, तो इन जनरल मैंने देवेश से बोला कि क्यों ना पोस्ट प्रोडक्शन की तुम उसके बारे में बोलना शुरू करो. तो वी हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर आई थिंक. तो छोटे छोटे हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन देते थे कि कैमरा सेटिंग क्या रखनी है, पोस्ट प्रोडक्शन है तो क्या शूट करना है, क्या चीज़ें करनी है. तो वो काफ़ी अच्छा उसने पकड़ा, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपर्ट, एज एन एक्सपर्ट देवेश काम करते हैं मेनली वहाँ पर, तो उसने एक अच्छा रोल प्ले किया. तो आज की डेट में अभी हम लोग ने उसमें कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट किए हैं कि लोगों को, जस्ट हम लोग का मेन पर्पज़ सिर्फ इतना है कि लोग ट्रेंड हो, एटलीस्ट उनको नॉलेज हो.
जैसे क्या होता है, लोग मास कॉम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से, बट कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो उनको कहीं जाके इंटर्नशिप या चीज़ों को लेना होता है, तो वो लैक ऑफ वो भी हो जाता है कि वो टाइम देना पड़ता है. तो इस बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि सर इसके बारे में क्या होता है ये, तो आप 30 सेकेंड और एक मिनट में नहीं होता है बता सकते, तो इसीलिए हमने फिर डिसाइड किया तो एक कोर्स टाइप में वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो सब्जेक्ट वाइज हमने क्रिएट किया और उसको लॉन्च किया, और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है.
और ये मतलब एक एड ऑन है, मतलब ये ऐसा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है किसी भी कोर्स का, एक एड ऑन है कि अगर एक स्किल एड ऑन है कि आपको इसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए. तो इसके बारे में हम लोग ने शुरू किया, WCA देवेश के नाम से चैनल हम लोग का है इंस्टाग्राम पे, तो उस पर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को बहुत बेनिफिट देती है. सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब मुझे लगता है कि 99.9% पॉजिटिव कमेंट्स एंड मैसेजेस हैं, तो हम लोग को लगता है कि जो लोग साथ साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं.
क्योंकि मैंने देखा जब मैं अक्सर रील स्क्रॉल करता था तो बहुत इमेच्योर सी चीज़ें लोग बताते थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो मेरे को लगता था कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना लोग जानते तो बहुत कुछ हैं लेकिन बताना नहीं जानते, और वो चाहते भी नहीं है, वो सोचते हैं ये कोई बताने वाली चीज़ थोड़ी ना, बहुत हिडन रहते हैं. तो ये अक्सर सपना कहती थी यार इस चीज़ को बोलो अगर अच्छा रहेगा लोगों को पता चलेगा. मैंने कहा लेकिन ये क्या बताऊँ, ये तो लोगों को पता होगा, लेकिन मैं जब रोल कर स्क्रॉल करता था देखता था वो मिस इन्फॉर्मेशन लोग बोलते थे. तो मैंने कहा चलो मैं किसी चीज़ को कट तो नहीं करता, लेकिन हाँ जो एक्चुअल चीज़ें जो मुझे पता है वो मैं लोगों को बताऊँ. तो बताना शुरू किया तो अच्छा खासा आई थिंक 2023 के फॉलोअर्स हुए. फिर उसके बाद उस पर लोगों को बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए. तो ये देखते हुए फिर हमने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, आपको अपने मेन टाइम से टाइम निकाल के करना है. तो हम लोग ने सोचा कि चलो एक लोगों के लिए ही शुरुआत करते हैं.
मैं काफ़ी उम्दा आप लोगों से बात करके मुझे भी इतना पता लगा है काफी कुछ। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वहां पर सीधे तौर पर लोगों को बता रहे हो फेस टू फेस आके, तो लोग जरूर प्यार करते होंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, इट मींस अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा एंड मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, ये गुफ्तगू हमारी 2-3 घंटे चल सकती है, ठीक है। मैं इतना फिल्मी कीड़ा हूँ, मेरे बहुत सारे सवाल हैं, बट एनीवेज जितनी हम लोगों ने बात करी, जितना कुछ सीखा, मुझे बहुत मजा आया। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों तक सही शब्दों के साथ हम वैल्यूज डिलीवर कर पाए होंगे। काफी सारी गुफ्तगू रही और कोशिश यहाँ पर ये रही कि एक एडिटिंग के स्पेस को, एक पोस्ट प्रोडक्शन को पूरा एक्सप्लोर किया जाए। पूरा एक्सप्लोर कर पाना इतने ही लिमिटेड टाइम में मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उतनी लेयर्स हमने यहाँ पे हटाई। बाकी फिर भी अगर कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई पेज इंस्टाग्राम का अगर आप बताना चाहें हाउ टू कॉन्टैक्ट यू गाइज, तो प्लीज बता दीजिए।
कभी भी अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जानना चाहते हैं तो wcapoststudio.com, आप इस पे जा सकते हैं। सारे सोशल मीडिया पेजेस पे एक्टिव है wcapoststudio। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो wcadevesh इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।
ऑलराइट, सो ऑन दिस नोट, दिस इज आरजे सागर, अब चलता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम,
थैंक यू सागर,
एंड थैंक यू सो मच दोस्तों यहां तक इस एपिसोड को सुनने के लिए। अब इजाजत दीजिए, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।